बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बसीरत के साथ आपका मेज़बान आसार दनकवी आपको खुशामदीद कहता है। आज हम जिस अहम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है ईरान और इराक की मौजूदा सूरतेहाल और ख़त्ते में पेश आने वाली कशीदगी। इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है जनाब डॉक्टर मीसम हमदानी साहब को। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह मशरिक़ वुस्ता की, खुसूसन ईरान और इराक और शाम की सूरतेहाल पे गहरी निगाह रखते हैं। डॉक्टर साहब से सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा, सुकूत सदाम के बाद इराक की मुख्तसर तारीफ हमारे नाज़रीन के लिए वाज़े करें कि हमारे नाज़रीन को पता चले कि सुकूत सदाम के बाद इराक में क्या हुआ और क्या हो रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है कि सदाम के सुकूत के बाद अब तक जो है मौजूदा सूरतेहाल क्या है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, नाज़रीन के लिए भी बहुत से मसाइल जानते हैं लोग, लेकिन एक मुख्तसर तौर पर हम इस तारीख को बयान करना चाहें। तो सद्दाम की सकूत के बाद जब अमेरिका दाखिल हुआ है इराक के अंदर, अमेरिका के साथ मुख्तलिफ फोर्सेस और भी थी, मुख्तलिफ ममालिक थे, बरतानिया थी और यूरोपीय ममालिक थे, नेटो था। तो उसके बाद इराक फौरी तौर पर एक ऐसे मुल्क की शक्ल इख्तियार कर गया कि जहाँ पर इंतहाई हर्ज व मर्ज आप कहें अफरा तफरी का आलम था और दहशतगर्दी के बेशुमार वाकयात वहाँ पर पेश आए हैं और बेशुमार हर रोज़ जो है वो बम ब्लास्टिंग, कार ब्लास्टिंग, अच्छा उसके बाद टारगेट किलिंग्स। आपको अगर याद होगा तो उस ज़माने में एक दफ़ा एक रिपोर्ट भी आई थी कि कितने सैकड़ों के हिसाब से इराकी दानिशमंद, दानिशवार हजरात, यानी ऐसे लोग कि जो मुख्तलिफ शोबों के माहिर थे, उनको टारगेट किलिंग किया गया। और एक दफ़ा एक रिपोर्ट में ये भी इसकी तरफ भी इशारा किया गया था कि जो टारगेट किलिंग हो रही है खुसूसन इराक़ के साइंसदानों की, तो इसके पीछे इसराइल का बाकायदा जो है वो हाथ था, मुसाद मौजूद थी। चूँकि आलम इस्लाम के अंदर बिल आखिर वो ये नहीं देख सकते कि इल्म तरक्की करे और कहीं पर भी किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो इस तरह की कोई इस्तेकाम मौजूद हो। बहरहाल जैसे ही सदाम हुकूमत गिरी है तो उसके बाद ये सूरतेहाल जो है वहाँ पर पेश आना शुरू हो गई और बिल आखिर इराकी कौम ने बाकी जगहों की नस्बत, आप देखें मसलन मैं बाकी जगहों पे जब इशारा कर रहा हूँ तो उससे मेरी मुराद मसलन अफ़गानिस्तान है। आप देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब रशियन का उस मौके का USSR जो है उसने जब अटैक किया और उसके बाद मुजाहिदीन ने क़याम किया, बिलाखिर पूरी दुनिया से इस्तिकबार मुखालिफ कुव्वतों ने उनकी सपोर्ट की और वो कामयाब हुए कि वहाँ से रूस को बाहर निकाल दें।
जी जी।
उसके बाद से अब तक वो अपने पाँव पर उस तरह खड़े
नहीं हो सके।
लेकिन इराक के अंदर बहरहाल इराकी कौम ने ये जुरत दिखाई कि वो एक अरसा शुरू का कुछ चंद सालों का जो है वो हर्ज व मर्ज का और अफ्तर तफरी का शिकार रहा, लेकिन बहरहाल वहाँ पर एक कदीम ज़माने से दीनी मरकज़ नजफ़ मौजूद है, रहबरियत नजफ़ की जो उलमा कराम मराजो ज़ाम है उनकी मरकज़ियत मौजूद है। एक बड़ी आबादी इराक़ की जो है वो शिया मुसलमान है और शिया मुसलमान उन मराजो ज़ाम की महवर में या उनके नुक्ते पर जो है वो मुजतमे हैं आपस में। इराक की अगर आप हम देखें तो तीन किस्म की, हम इराक की अगर तकसीम करना चाहें तो तीन किस्म की तकसीम हो जाती है। इराक का एक बड़ा इलाके कुर्द इलाके हैं और एक बड़ी आबादी सुन्नी आबादी है और सबसे ज़्यादा जो इराकी आबादी है जिसको हम कहें कि इराक में जो है वो आबादी का तनासुब है वो शिया मुसलमान है। इसी तरह इलाके भी मुख्तलिफ हैं, डिवाइड हैं, जो सऊदी अरब के साथ एक सरहद है नजफ़ की शिया इलाके हैं, इराक के साथ जो सरहद ईरान के साथ जो सरहद मौजूद है ईरान के साथ, वहाँ पर शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, कुर्द भी हैं, ठीक है, मुख्तलिफ इलाके आबाद हैं। खूब, अब इन तीनों आबादियों का जो ये मुल्क था इसमें जो इस्तकबार की साजिश थी और वो जो वो चाह रहा था ख़ुद अमेरिका और दूसरी कुव्वतें, वो ये चाह रही थी कि इस इराक को इन तीन हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक कुर्दिस्तान अलग हो, सुन्नी स्टेट्स मसलन सुन्नी इलाके जैसे सलाउद्दीन सूबा सलाउद्दीन है या शाम के साथ जो इलाके हैं वो अलग हों और शिया इलाकों को अलग करके इन इराक को अमलन तीन हिस्सों में,
यानी तीन मुमालिक,
तीन मुल्क जो है वो डिवाइड कर दिया जाए। لیکن بہرحال بین الاقوامی سازشیں جہاں پر ہوتی ہیں ظاہر ہے اس کے مقابلے میں قوموں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمسایوں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو قوتیں موجود ہیں وہ بھی فیصلے کرتی ہیں، تو یہ عملاً وہ انجام نہیں دے سکے. جب یہ عملاً انجام نہیں دے سکے تو پھر وہ دوسرے موڈ میں، دوسری موج میں انہوں نے آ کے یہ داعش والا فتنہ اور دہشت گردی کی باقاعدہ منظم سازشیں کرنا شروع کی. بھارت اس وقت امریکہ کو ریزسٹنس ملی عراقی پبلک کی طرف سے، جس کے اندر جب آپ کو یاد ہوگا کہ مہدی ملیشیا کا نام سامنے آیا کہ مہدی ملیشیا کی طرف سے باقاعدہ ان کو مسلح مزاحمت اور مقاومت کا سامنا کرنا پڑا شیعہ علاقوں کے اندر. اور بہرحال یہ آہستہ آہستہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ عراق کی مختلف شخصیات، مختلف پارٹیز، مختلف لوگ، گروہ جو ہیں وہ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں ایک مستقل اور خود مختار ملک کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے آنا پڑے گا. اور انہوں نے عراق کا آئین جو ہے وہ، عراق کی ایک پہلے جو ہے کمیٹی بنی، ایک کمیٹی بنی، ایک عارضی حکومت بنی، پھر بہرحال آئین بنا اور آئین کو جو ہے وہاں پہ پاس کیا گیا. اس آئین کے مطابق عراق کو جو ہے وہ پارلیمنٹ نظام کے تحت ڈیموکریٹک ملک جو ہے وہ ہاں اعلان کیا گیا، اور وہاں پر پھر ایک باقاعدہ پارلیمنٹ کا قیام ہوا اور پارلیمانی طریقے سے اب وہاں پر جو ہے وہ حکومت موجود ہے.
موجودہ پارلیمان نظام بالکل پاکستان کی طرز پہ ہے یا انڈیا کی طرز پہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے؟
یا بالکل مختلف ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر مختلف نظام موجود ہیں. تقریباً عراق کا بھی فیڈرل پارلیمانی سسٹم ہے جیسے ہمارے یہاں نظام موجود ہے. مختلف صوبے ہیں اور پارلیمنٹ جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے، اور چیف ایگزیکٹو بھی عراق کے اندر وہ وزیر اعظم ہے، اور مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں عراق کے اندر کہ جو الیکشن میں جو ہے وہ حاضر ہوتی ہیں، الیکشن میں باقاعدہ شرکت کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ تشکیل پاتی ہے. پارلیمنٹ کے اندر جن کی سیٹس زیادہ ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ تشکیل دیتی ہیں، وزیر اعظم کو جو ہے بناتے ہیں.
اگر ہم عراق کے یعنی داعش کے دخول کے بعد دیکھیں، مثلا داعش آئی اور اس کے بعد والے حالات دیکھیں اور اس کے بعد یہ جو ہوا، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں دور حاضر میں، ابھی کیا ایران اور عراق جنگ متوقع ہے؟ امریکہ کی پالیسی، استکبار کی پالیسی، آیا ایران امریکہ جنگ دوبارہ جو روایتی حریف جن کو کہا جاتا ہے کہ آٹھ سال جنہوں نے جنگ لڑی آپس میں، تو اب دوبارہ کیا آمنے سامنے ہونے کا امکان ہے ان کا؟
یہ بات کافی کی جاتی ہے کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، خصوصاً اس واقعے کے بعد کہ جو جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ پیش آیا بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ، اور جب عراق، ایران نے اس پر جو ہے اپنا رد عمل دکھایا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عراق پر اٹیک ہی ہے. ایران نے عراق کی مختلف جو ہے وہ چوکیوں پر، مختلف اڈوں پر، فوجی اڈوں پر اٹیک کیا گیا. حالانکہ جو مسائل کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس وقت ایران اور عراق جنگ کی صورتحال نہیں ہے، بلکہ یہ ایران اور امریکہ جنگ کی صورتحال ہے. اس کو ایران اور عراق اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے، چونکہ پرانا آٹھ سالہ جو دور گزرا ہے ابھی بالکل اس کے برعکس ہے. یعنی اگر ہم اس اعتبار سے بھی کہنا چاہیں کہ جتنا ایران کا انفلوئنس اس وقت موجود ہے جن ممالک کے اندر، شاید سب سے زیادہ انفلوئنس جس ملک کے اندر موجود ہے وہ عراق ہے. عراق اور ایران کے بہت قدیمی رابطے ہیں، مذہبی اعتبار سے بہت زیادہ مستحکم رشتے موجود ہیں، اقوام کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہے جب صدام نے ایران پہ اٹیک کیا تھا تو اس کا ایک بہانہ یہ تھا کہ جو ایران کے مختلف شہر عراق کے ساتھ موجود ہیں وہ کہتے تھے عرب شہر ہیں اور میرے ہیں، عربی اجمی کی اس بیس پہ دیکھتا تھا. لیکن یہ قدیم سے ایران کے اندر عرب اقوام موجود ہیں، ایک بہت بڑا علاقہ ہے خوزستان کا علاقہ ہے، اس کے ساتھ حضرت دانیال پیغمبر کی جہاں پر قبر ہے اس کے اطراف کا جو علاقہ ہے وہاں سارے عرب جو ہے وہ آباد ہیں. ان کی قومی لحاظ سے یعنی ان اقوام کے لحاظ سے جو ہے وہ آپس میں رشتہ ناطہ موجود ہے. پھر تجارتی لحاظ سے زندگی آپ اگر دیکھیں، تجارتی لحاظ سے ایران اور عراق کے بہت زیادہ ریلیشن شپ موجود. جو لوگ جاتے ہیں عراق ان کو اندازہ ہے کہ حتیٰ آپ عراق کے اندر ایران کا اے ٹی ایم کارڈ بھی ہو تو وہ بھی آپ چلا سکتے ہیں، ایرانی کرنسی وہاں چلتی ہے، عراقی کرنسی. لہٰذا صدام کی جو دور حکومت کے اندر جو ایک دونوں ممالک کا آپس میں تقابلی جائزہ تھا وہ بالکل مختلف تھا، اور ابھی صورتحال اس کی بالکل مختلف ہے. عراق کے اندر جو اہم ترین شخصیات، سیاسی شخصیات موجود ہیں جن کے اندر سید عمار حکیم کی گیا ہے، جس کے اندر سب سے اہم شخصیت جو ہے وہ مقتدیٰ صدر کی شخصیت ہے، پھر اس کے علاوہ مختلف دوسری پارٹیز ہیں ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, आपको मैं खिदमत आप अर्ज़ करूँ, मसलन कुर्दों की पार्टीज़ हैं, बारजानी की पार्टी, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं, उन सब के इतफाक से, इन सब के, चाहे वो कुर्द हों, चाहे वो शिया हों, चाहे जो है वो, इन सब के जो सद्दाम दौर में सद्दाम के अपोजिशन में थे, उनके बहुत गहरे रवाबित हैं ईरान के साथ,
ईरान के साथ।
चूँकि एक दौर जब उनका सद्दाम दौर जब गुजर रहा था, तो उस वक्त ये सब यहीं पर मौजूद थे और उस वक्त से इनके बहुत गहरे मरासम हैं। मैं सिर्फ इशारा करता चलूँ बात को मुख्तसर करते हुए, चूँकि वक्त भी नहीं है, सिर्फ इशारा करता चलूँ कि आखिरी कुछ साल पहले कुर्दिस्तान के अंदर ये कोशिश की गई कि कुर्दिस्तान की तरफ से एक वहाँ पर जो है आप उसको कहते हैं रेफरेंडम, रेफरेंडम करवाया गया कि जी कुर्दिस्तान को अलग होना चाहिए, ख़ुद मुख्तार होना चाहिए इलाक से। उस रेफरेंडम के नतीजे में उन्होंने कहा जी हम कुर्दिस्तान को जो है वो अलग करते हैं, और फिर उस इराक गवर्नमेंट ने कुर्दिस्तान की जो एयरपोर्ट है अरबील की, उसको बंद कर दिया, उसके जो है बॉर्डर्स को सीज़ कर दिया, और एक अच्छी खासी टेंशन की फ़ज़ा क्रिएट हो गई। इतफाक़ से चूँकि ये फ़ज़ा ऐसी है कि हम जनरल कासिम सुलेमानी की बात, वहाँ पर भी जनरल कासिम सुलेमानी की एक बहुत बड़ी खिदमत खुद इराक के अवाम के लिए, कि फौरन जनरल कासिम सुलेमानी ने एक सफ़र किया कुर्दिस्तान का, और चंद ही दिनों के अंदर ये सारा मसला जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि कुर्दिस्तान के अंदर जितनी लीडरशिप मौजूद है, कुर्द लीडरशिप, उनके जनरल कासिम सुलेमानी के साथ बहुत गहरे मरासिम थे। और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि सद्दाम की जब अपोजिशन के अंदर ये लोग थे, तो उस वक्त बहुत गहरे इनके मरासिम, लिहाजा ये बात कतन सही नहीं है कहना कि हम कहेंगे कि ईरान इराक जंग की तरफ जो है बढ़ा जा सकता, नहीं, बल्कि ये ईरान अमरीका टेंशन का नतीजा है जो कुछ अभी हो रहा है।
ईरान अमरीका टेंशन अगर आप कहें, ईरान इराक जंग अगर नहीं हो सकती, तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि अमेरिका ईरान से 12,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है, ईरान के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो डायरेक्ट अमेरिका पे अटैक करे, और ना अमेरिका के पास ये सलाहियत है कि वो डायरेक्ट ईरान पे अटैक करे वहाँ से बैठ के। अमेरिका ने ये किया हुआ है कि ईरान के अतराफ़ में अपने फौजी अड्डे बनाए हुए हैं, उसके बेसिस मौजूद हैं, उसके तमाम मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, तो अमेरिका का ईरान पर हमला करना तो हम इजी समझते हैं, ईरान कैसे अमेरिका को तबाह कर सकता है सारी सूरत।
ये बहुत अहम आपका सवाल है, इसके लिए भी ये काफ़ी वक्त चाहिए इसको खोलने के लिए। मैं इंतहाई मुख्तसर अंदाज में अगर बयान करूँ तो वो ये है कि ईरान ने जो अपना डिफेंस सिस्टम बनाया है, वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ईरान का डिफेंस सिस्टम जो है वो बनाया गया है। यानी हम ईरान के जो मिज़ाइल सिस्टम है, इसको कहते हैं कि शहीद तेहरानी मुकदम इसके जो है वो फाउंडर हैं ईरान की मिज़ाइल सिस्टम। तो ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम इन सूरत हाल को सामने रखते हुए बनाया, और उस डिफेंस सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी की है, और इसी वजह से अमेरिका को सबसे ज़्यादा, जब उसने वो मुआहदा ख़त्म किया इराक़ के ईरान के साथ जो एटमी मुआहदा हुआ था, उसको भी ख़त्म करने की एक वजह ये थी कि वो ये चाहता था कि ईरान के जो मिज़ाइल सिस्टम है उसको भी उसी मुआहदे के अंदर शामिल किया जाए, ताकि उसको रोल बैक किया जा सके। तो ईरान का असल मिज़ाइल सिस्टम इसकी डिफेंस लाइन है, और जैसे आपने कहा कि ईरान हो सकता है अमेरिका की सरजमीन पे अटैक ना कर सकता हो, लेकिन एक दफ़ा, यही एक खूबसूरत बात है, उस पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, कि एक दफ़ा एक जनरल था ईरानी, उन्होंने जब यही ज़्यादा बात हुई कि जी इसराइल तेहरान को ख़त्म कर देगा और अटैक करेगा, 500-300 मकामात पर अटैक करेगा, जैसे अभी भी अमेरिका ने कहा था हम 35 मकामात पर अटैक करेंगे, तो उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, उसने कहा था हाँ ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि इसराइल जो है वो अटैक करे, कर सकता है, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, कि जो उसके जहाज़ अटैक करने आएंगे जब वापस जाएंगे तो इसराइल नहीं होगा,
ऐसा ही है,
लिहाजा वो वापस जाकर अपनी जो है वो एयरपोर्ट्स ही नहीं होंगी, वो जगह ही नहीं होंगी जहाँ से वो उन्होंने अटैक शुरू किया। तो लिहाजा डिफेंस लाइन ईरान ने भी इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए अपनी डिफेंस लाइन बनाई, और वो इसी वजह।
डॉक्टर साहब आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में हमें वक्त दिया और हमने आपकी गुफ्तगू से इस्तेफादा किया। नाज़रीन ये था हमारा आज का मौजू, इंशाल्लाह नए मौजूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।